हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 20। इस आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण एवं अध्ययन करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बरधारुण बिम्बफलोधरोष्ठा पुण्डरसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि गत्वा अहं न जाने। यं प्राव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति दिशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुपया मे गुरुं मुनीना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को श्रीमद् भागवतम महापुराण के अध्ययन की महिमा का बखान कर रहे हैं कि जो ये शास्त्र श्रीमद् भागवतम है उसको श्रवण करने से कितना कितना लाभ जीव को प्राप्त हो सकता है। उसके विषय में अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा कि आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए कि हृदय के अंदर भागवतम को श्रवण करने की लालसा उत्पन्न हो, क्योंकि जब तक ये लालसा उत्पन्न नहीं होगी कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए 16 में क्या कहा, शुश्रूषु श्रद्ध धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। कि नहीं हो रही है रुचि तो आप ऐसा करो, पुण्य तीर्थों में जाओ, वहां पर महात्माओं की सेवा करो, श्रद्धा और थोड़ी सी भी इच्छा होगी तो फिर महात्माओं की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से हृदय के अंदर वो लालसा बढ़ेगी। और इस लालसा को क्यों बढ़ाना है, इससे क्या होगा, उसका वर्णन करना शुरू किया है श्लोक नंबर 17 से। श्रवताम सकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंस्तस्थो ह्य भद्राणी विधनोति सुहृत्तसाम। कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है तो भगवान कथा के द्वारा उसके हृदय में बैठ जाते हैं और उसके हृदय के अनर्थों को दूर कर देते हैं। और जब अनर्थ दूर हो जाते हैं तो कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती है, है ना? कैसे होता है आगे, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर हृदय में भागवत श्रवण करने की लालसा उत्पन्न होती है तो क्या करता है, नित्यम भागवत सेवया, कंटिन्यूस वो भागवतम को श्रवण करने की इच्छा करता है। ऐसा नहीं अपने कार्य छोड़ देता है, लेकिन अपने कर्तव्यों को पूरा करते करते साथ में भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए समय निकालता है। क्योंकि जब तक लालसा उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम समय किसके लिए निकालते हैं, जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसके लिए हम समझते हैं कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब भगवान की कृपा से हृदय के अंदर ये बात बैठ जाती है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इस कलयुग में दो कार्य केवल इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर किसी को देखा जाए, किसी कार्य में अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो श्रवण और कीर्तन। इस कलयुग में इन दो कार्यों के अतिरिक्त और सारे कार्य आपके नियत कर्म हो सकते हैं, लेकिन वो आपको भवबंधन से छुड़ाने के लिए नहीं हो सकते। तो भले हम अपने नियत कर्म करते रहे, लेकिन साथ साथ में हमको अपने भवबंधन से छूटने के लिए भी तो कार्य करना है ना। तो उसके लिए शास्त्र ने लिख कर दे दिया कि ये युग जो है वो ध्यान लगाने का नहीं है, तपस्या करने का नहीं है, विग्रह सेवा का भी नहीं है। साफ साफ लिखा कि कृतो यध्यायते विष्णु, कि सतयुग में भगवान का ध्यान लगाने से, त्रेतायाम यज्ञ दो मुख है, त्रेता में यज्ञ इत्यादि करने से, द्वापुरे परिचर्याया द्वापुर में विग्रह सेवा करने से कलावतत हरि कीर्तना, और कलयुग में केवल और केवल हरि कीर्तन करने से। कीर्तन का मतलब होता है भगवान की कथाओं को श्रवण करना, भगवान की कथाओं को बखान करना और भगवान के पवित्र नाम का जप करना, ये सब कीर्तन में आता है। तो कलयुग में यदि जीव को मुक्ति चाहिए, जीव को यदि अपने जीवन को, अपने इस मनुष्य देह को साकार करना है, मनुष्य देह का लाभ लेना है, तो श्रवण और कीर्तन ही एकमात्र आपको आपका साथ दे सकते हैं। तो जब हृदय के अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि मैं भागवत श्रवण करूं, तो क्या होगा, श्रवण करेगा नित्यम भागवत सेवाया और नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। उससे क्या होगा, हमारे जितने भी अभद्र हैं, जितने भी हृदय के अंदर अपराध हैं, जिसके कारण हम भगवान के साथ अपने प्रेम संबंध को निर्माण नहीं कर सकते हैं, वो सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं। और भागवत युक्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, और भगवान के अंदर हमारी नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी भक्ति जिसमें कभी लय नहीं आता, मतलब जिसमें कभी उतार चढ़ाव इस तरह नहीं आता, वो नैष्ठिकी एकदम निष्ठा के साथ हम भगवान की भक्ति करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तदा रजस्तमो भावा कामलोभाय दस्यम कामलोभादयश्चये चेत एतैरनाविद्धिम स्थितम सत्वे प्रसीदति। फिर जब भगवान के अंदर नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण का भाव समाप्त हो जाता है। तदा रजत तमो भावो कामलो, फिर जो हृदय के अंदर काम है, वासना है, संसार के प्रति जो आसक्ति है, उसका सर्वनाश हो जाता है और जीव क्या होता है, सत्वगुण में स्थित हो जाता है। सत्वे प्रसीदति, सत्वगुण में स्थित हो जाता है, और सत्वगुण में स्थित होने के बाद उसे भक्ति में आनंद आने लगता है। और जब वो भक्ति में आनंद उसको आने लगता है, फिर क्या होता है, फिर सत्वगुण भी गायब हो जाता है, यानी तीनों गुणों से मुक्त होना है ना, फिर रजोगुण चला जाता है, तमोगुण चला गया, अब सत्वगुण में स्थित होकर भगवान की भक्ति करने लगता है, लेकिन इतना आनंद आता है, फिर वो उस सत्वगुण से मुक्त होकर विशुद्ध सत्वगुण में रहकर भगवान के साथ अपने संबंध को, अपने प्रेम को निर्माण करने लगता है, और स्वयं भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान हृदय के अंदर साक्षात उसको दर्शन देते हैं, जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, तो वो सारे गुण समाप्त हो गए, फिर वो वासुदेव स्थिति में आ जाता है, यानी जिसमें उसको भगवान का, भगवान के विषय में सब कुछ पता चल जाता है, भगवान का तत्व ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, जो हम आज के श्लोक में पढ़ेंगे। कृपया मेरे साथ साथ श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूच्य कहते हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्तसंगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तियोगतः भगवत तत्वविज्ञानम् मुक्तसंगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तियोगतः भगवत तत्वविज्ञानम् मुक्तसंगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तियोगतः भगवत तत्वविज्ञानम् मुक्तसंगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तियोगतः भगवत तत्वविज्ञानम् मुक्तसंगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तियोगतः भगवत तत्वविज्ञानम् मुक्तसंगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तियोगतः भगवत तत्वविज्ञानम् मुक्तसङ्गस्य जायते एवं प्रसन्नमनसो भगवत् भक्तियोगतः भगवत् तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते एवं प्रसन्नमनसो भगवत् भक्तियोगतः भगवत् तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। शब्दों का अर्थ देखिए। एवं, एवं का मतलब होता है इस प्रकार। इस प्रकार तो किस प्रकार, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये पूरा लिंक जा रहा है कि जब श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से अभद्र नष्ट हो जाएंगे, यानी नष्ट प्रायशु भद्रेशु, तो क्या होगा, भगवान के अंदर भक्ति भवती नैष्ठी की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो रजोगुण और तमोगुण का भाव समाप्त हो जाएगा, और फिर व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो जाएगा, और सत्वगुण में स्थित होने के बाद संसार में जो आसक्ति है उसका सर्वनाश हो जाएगा। आसक्ति से, आसक्ति की से मुक्ति हो जाएगी तो फिर व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा, और जब स्थित शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा फिर क्या होगा, इस प्रकार एवं प्रसन्न मनसो। प्रसन्न का मतलब होता है सुफूर्त, बहुत संतुष्टि, यानी कि ऐसी संतुष्टि उसको महसूस होगी, उसको ऐसा लगेगा कि हृदय प्रसन्न हो गया। अभी कुछ भी हो रहा है उसको लगेगा ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि हृदय के अंदर के सारे अभद्र नष्ट हो गए हैं, कृष्ण वहां पर विराजमान हो गए हैं, और जब कृष्ण का उसे सानिध्य प्राप्त हो जाता है फिर क्या होता है, उसे संसार में कुछ भी खराब नहीं लगता। ये संसार में भी हम देखते ना, जब किसी से प्रेम हो जाता है और प्रीतम जब प्राप्त हो जाता है फिर ऐसा लगता है कि आसमान बादल जमीन हर चीज जो भी है वो एकदम परफेक्ट है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया ना, अब कुछ गलत नहीं, सब कुछ है। तो फिर क्या होता है, हृदय बहुत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये भौतिक है तो यह सुख अशाश्वत होता है, लेकिन जब कृष्ण की प्राप्ति को हृदय में अनुभव किया जाता है तो हृदय इतना इटर्नल प्रसन्न हो जाता है, माना अब ये प्रसन्नता समाप्त होने वाली नहीं है। इस प्रकार प्रसन्न मनसा, और इस प्रकार से मन प्रसन्न हो जाता है, फिर क्या होता है, भगवत भक्ति योग्यता, भगवान की भक्ति के अंदर, भगवत भक्ति यानी भगवान की भक्ति के योग्यता यानी संपर्क में आते हैं। भगवान की भक्ति के योग में कैसे संपर्क आते हैं, फिर क्या करते हैं, सदैव फिर, क्योंकि मन इतना प्रसन्न होता है और श्रवण और कीर्तन में ही कृष्ण प्राप्त हो रहे होते हैं, तो जीव क्या करता है, उसी भक्ति के साथ अपना संपर्क जोड़ देता है, सदैव ढूंढता रहता है वो चांस कि मुझे किसी तरह से भगवान के विषय में कुछ श्रवण करने के लिए मिले, कोई संत प्राप्त हो, कोई साधु का सानिध्य प्राप्त हो जिससे मैं कृष्ण की कथाओं को श्रवण करूं, जो मुझे कृष्ण के विषय में और सुनाए और सुनाए और सुनाए, मैं भगवान के विषय में और भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारा दिल नहीं करता ना, अभी हम क्या सोचते हैं, समय को देख रहे होते हैं, टाइम देख रहे होते हैं कि भाई आज की फाइल 1 घंटे की, मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे हमारे ऊपर किसी ने वज्र का प्रहार कर दिया, लेकिन जब सारे अभद्र नष्ट हो गए, शुद्ध सत्व में जब व्यक्ति आ जाएगा फिर भगवत भक्ति योग्यता, फिर वो वही करेगा, अपने कार्य से, भौतिक कार्य से निवृत्त होने का चांस ढूंढेगा कि किसी तरह से मैं कार्य को समाप्त करूं, मैं अपने भगवान से बात करूं, मैं भगवान के साथ अपने संबंध, प्रेम संबंध का रस लूं, श्रवण और कीर्तन के द्वारा। फिर वो क्या करता है, भगवत भक्ति योग्यता, केवल श्रवण और कीर्तन में उसकी इतनी रुचि हो जाती है कि वो मौका ढूंढता है कि मैं कैसे करूं, और उतना जैसे जैसे श्रवण और कीर्तन करता रहता है फिर क्या होता है, भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत अर्थात भगवान का तत्व मतलब ज्ञान, विज्ञानम यानी वैज्ञानिक, यानी कि जो भगवान का तत्व है, अब क्योंकि हृदय के अंदर सारी ग्रंथि मिट गई है, हृदय के अंदर से सारी दुर्वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो भगवान का तत्व विज्ञान, तत्व विज्ञान क्या होता है, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के जो आश्रय हैं, यानी भगवान किस तरह से संपूर्ण स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के कंट्रोलर हैं, उस ज्ञान को समझने को तत्व विज्ञान कहते हैं। यानी भगवान का ज्ञान हो जाता है, वो धीरे धीरे समझ में आता है कि जीव तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, माया तत्व क्या है और कृष्ण कैसे उन सबका आश्रय है, उसके विषय में जानने लगता है। उसका अब ज्ञान विज्ञान, उसको ज्ञान आ जाता है और वैज्ञानिक तरीके से वो उसको अनुभव करता है और वो भगवान को रियलाइज करने लगता है कि भगवान कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं, भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त करके उसे इतनी प्रसन्नता होती है कि मुक्त संगस्य जायते, मुक्त संगस्यता मुक्त हो जाता है, संगस्य यानी संगति का, जायते जो जो हो जाता है, संगति से मुक्त हो जाता है। मुक्त संगस्य का मतलब होता है, देखो जब तक हम अपने आप को यह शरीर समझते हैं तो शरीर से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं, भले हम अपने आप को कितना ही समझाएं कि हम आत्मा हैं इनके साथ हमारा अटैचमेंट नहीं, लेकिन फिर भी जब तक हम इस स्थिति पर नहीं पहुंचते, भगवत भक्ति योग्यता, भगवान की भक्ति के साथ प्रसन्नता के साथ योग नहीं होता है, तब तक हम फिर भी वही कार्य करते हैं। कौन सा कार्य, वही संसार के समस्त जीवों को अपना समझना और उनके लिए यानी अपने शरीर और शरीर से रिलेटेड चीजों के लिए कार्य करना। लेकिन फिर क्या होता है, जब भगवत तत्व विज्ञान हो जाता है, जब हम बहुत अच्छी तरह से भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की सुंदरता को, भगवान की मधुरिमा को, भगवान की वास्तविकता को रियलाइज करने लगते ना, फिर जीवन की जो ये सारी दुर्वासनाएं हैं कि इस शरीर या शरीर से रिलेटेड किसी चीज के अंदर जो भी हृदय के अंदर जो वासना है उससे मुक्ति हो जाती है, मुक्त संगस्य जायते। फिर उससे जब हम मुक्त हो जाते फिर क्या होता है, उसको आगे पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 21 में आएगा। पहले इसका अनुवाद देखिए, इस प्रकार शुद्ध तत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संशय में प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान यानी भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त होता है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में 7.3 में कहा गया क्या, मनुष्याण सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः। कहा गया है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्धये, बाकी सब हजारों में से एक क्या करता है, जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, बाकी 999 क्या करते हैं, वो वही कार्य करते हैं जो जानवर करते हैं, यानी कि वो जीवन सिद्धि को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, वो आहार निद्रा और भय और मैथुन के अंदर अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। लेकिन एक क्या करता है उसमें से, जिसके अंदर अक्कल होती है, बुद्धि होती है, वो क्या करता है, जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लगे रहते। अधिकांश मतलब बाकी के जितने बचे, एक ने तो सिद्धि की तरफ कदम बढ़ाया और बाकी लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, निद्रा में सदैव लगे रहते। ऐसे अनेक पशु तुल्य मनुष्य में से कोई एक ऐसा वास्तविक मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कहा, जो भगवान के विषय में श्रवण नहीं करना चाहते हैं, जो जीवन की सिद्धि यानी कृष्ण प्राप्ति की ओर बढ़ते नहीं हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डेड पर्सन एंड एनिमल। पशु तुल्य बोला गया यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ कहा, ऐसे अनेक पशु तुल्य मनुष्य में से कोई एक ही वास्तविक मनुष्य होता है, बाकी सब वास्तविक मनुष्य नहीं, सो कॉल्ड ह्यूमन है। वो वास्तविक मनुष्य होता है जो मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी को समझता है और बताए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। वो क्या करता है, प्रयास करता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए और रूल्स एंड रेगुलेशन को, विधि विधानों को फॉलो करता है। जीवन में इस प्रकार सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जानता है। इतना भगवान श्री कृष्ण को जानना कितना ज्यादा कठिन है, यहाँ पर श्री भगवान जी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कोई एक होता है जो मनुष्य जन्म की जिम्मेदारी को समझता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है, और जीवन में इस प्रकार सफलता प्राप्त किए हुए, इस प्रकार मतलब एक कोई आया है आगे सफलता प्राप्त करने का, उसने प्रयास किया है, और इस तरह से जब एक एक हजारों में से एक एक आता जाता है, जब उसके हजार बनते हैं, तो इनमें से इस प्रकार सफलता प्राप्त किए हुए हजार व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जानता है। भगवान के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जानना हर किसी के लिए संभव नहीं है। कृष्ण को, कृष्ण के तत्व को, कृष्ण के ऐश्वर्य को, सुंदरता को, कृष्ण की रियलिटी को हर किसी के लिए समझना इतना संभव नहीं है वैज्ञानिक ढंग से। जो हम लोग आज के श्लोक में हमें क्या बताया गया कि भगवत तत्व विज्ञान, जो भगवान का जो तत्व है उसको समझना अत्यंत ही कठिन है, लेकिन जब गुरु कृष्ण कृपा की, गुरु और कृष्ण की कृपा की प्राप्ति हो जाती है तो कोई भाग्यवान जीव ऐसा कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता 18.55 में कहा गया है कि क्या कहा गया, भक्त्यामाम अभिजानन्ति। यही कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, ना जप से, ना तपस्या से, ना ध्यान से, ना यज्ञ से भगवान को नहीं जाना जा सकता, केवल भक्ति से। और भक्ति को पहले से ही समझ लेना चाहिए कि भक्ति क्या है, श्रवण और कीर्तन, ये भक्ति है। और इसी के जरिए जब हम इसमें शुद्ध होते जाएंगे और भगवान की कथाओं के जरिए क्या होगा, हमारे हृदय की अंदर की सारी दुर्वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, फिर उसी भक्ति में जब आनंद आने लगेगा, फिर उस एवं प्रसन्न मनसा भगवत भक्ति योग्यता, फिर हम भगवान की भक्ति योग को प्राप्त करेंगे, और केवल उसी भक्ति योग के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। 18.55 में भगवान ने बताया, यही बात उपर्युक्त श्लोक में स्पष्ट की गई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, जहाँ तक कि जिसने मानव जीवन की सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही सही या वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान सकता। भले उसे मनुष्य जीवन में कितनी सफलता क्यों न प्राप्त की हो जाए, लेकिन भगवान के विषय में वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान सकता। मानव जीवन की पूर्णता यानी सिद्धि, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी मानव जीवन की सफलता के विषय में बता रहे हैं कि मानव जीवन की पूर्णता तभी होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह द्रव्य का प्रतिफल नहीं है। यानी कि जब जीव को ये पता चल जाता है कि ये जो मैटर है, ये जो संसार, जो जो कि प्रकृति है, प्रकृति का फल प्रतिफल नहीं है, ये जीव जो है वो भगवान का अंश है, इस प्रकृति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति है वो भगवान के इस अंश से बिल्कुल अलग है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हृदय की ग्रंथि, है ना, वो आगे हम श्लोक में पढ़ेंगे। लेकिन जब जीव को ये पता चल जाता है कि जीव इस प्रकृति का हिस्सा नहीं है, जीव भगवान का अंश है और वो बिल्कुल इस प्रकृति से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जीव की जो रियलिटी है, जीव का जो स्वभाव है वो इस प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है। प्रकृति समाप्त होने वाली है, जीव शाश्वत है। प्रकृति बेजान है, उसके अंदर रियलाइज नहीं कर सकती, आनंदित नहीं हो सकती है, और जीव क्या है, सच्चित आनंद है। तो ये बिल्कुल अलग है। तो ये मनुष्य जन्म की जीव सफलता क्या है, पूर्णता क्या है, जब वो ये समझ लेता है कि वो द्रव्य का प्रतिफल नहीं है अपितु आत्मा है, इस द्रव्य से, इस जड़ शरीर से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो तो उसके कर्मों के अनुसार इसके अंदर इसको डाल दिया गया है, लेकिन वो इससे बिल्कुल भिन्न है। जब जीव को ये पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का रिलेशन केवल कृष्ण के साथ है, जब वो इस बात को, अभी हमको ये पता तो चल गया है कि हम आत्मा है, लेकिन इतना पता चलना काफी नहीं है ना, जब तक हम उसको रियलाइज नहीं करें। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर बोला, एवं प्रसन्न मनसा भक्ति भगवत भक्ति योग्यता, फिर उस तरह से जब हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं और श्रवण करने से जब भगवान के साथ अपना रिलेशन को निर्माण करते हैं, और फिर जब भगवान के साथ हमारा रिलेशन इतना पक्का हो जाता है कि हम उसको अनुभव करने लगते हैं कि कृष्ण मुझसे दूर नहीं है, वो यही मेरी बात सुन रहा है, और हर जगह कृष्ण को रियलाइज करते हैं, फिर क्या होता है, फिर हम वास्तव में अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं और कृष्ण का अंश, कृष्ण का ही संगी, केवल कृष्ण के साथ ही मेरी मैचिंग बनती है और किसी चीज के साथ नहीं बनती है। तो तब होता है, इसको बोलते हैं कि मानव जीवन की सफलता, सर्वोपरि बता रहे। और यूं ही वह यह समझ लेता है कि पदार्थ से उसे कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लोभ त्याग देता है और आध्यात्मिक प्राणी के रूप में अनुप्राणित हो जाता है। उसे ये पता चल जाता है संसार से किसी चीज का मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है और कोई भी चीज मुझे संतुष्ट कर ही नहीं सकती है, फिर भौतिक किसी भी चीज से उसको लेना देना नहीं होता है। कुछ भी हो रहा होता है, कोई लॉस भी हो रहा होता है, कुछ लाभ भी होता है, तो उसको फील नहीं होता है, उसको लगता है कि ये मेरे से बिल्कुल, मेरा इससे क्या लेना देना, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, इस संसार में आया इसलिए हूँ कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूँ, और भगवान की प्राप्ति मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। यदि इस कचरे के अंदर मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा तो फिर मैं कैसे ना भगवान को प्राप्त करूंगा, इससे बेहतर क्या है, जो अपने नियत कर्म है वो सिर्फ ड्यूटीज समझ कर, आसक्ति के साथ नहीं, ड्यूटीज समझ कर वो उसको अपने नियत कर्मों को पूरा करता है, और फिर किसी भी चीज के अंदर उसकी आसक्ति नहीं होती है और समझ लेता है कि पदार्थ के साथ उसका लेना देना कुछ भी नहीं है, और वो भौतिक लोभ उसका पूरा समाप्त हो जाता है और आध्यात्मिक प्राणी के रूप में अनुप्रदित हो जाता है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठा हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के अनुसार वास्तव में ब्राह्मण हो। अब यहाँ पर श्री गोपाल जी बोलते हैं कि ये सफलता, कौन सी सफलता, कि संसार की किसी भी चीज में आपकी कोई आसक्ति ना हो, केवल कृष्ण के साथ ही अपना संबंध आप स्थापित करो, वो कब होती है, जब आप रजोगुण और तमोगुण से बहुत ऊपर उठ जाओ। और कैसे होगा, रजोगुण और तमोगुण से कैसे होगा, ऊपर कैसे उठेंगे, वो बताया हमें श्लोक नंबर 18 में, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। जब हम कंटिन्यूस भागवतम को श्रवण करेंगे तो क्या होगा, भगवती उत्तम श्लोक के भक्तिर भवति नैष्ठिकी, जब हृदय के अंदर श्रवण करने के बाद नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, फिर क्या होगा, तदा रजस्तमो भावो कामलोभाय, फिर रजोगुण और तमोगुण का भाव समाप्त हो जाएगा, और जब ये दोनों भाव समाप्त हो जाएंगे फिर किस में आ जाएंगे, सत्वगुण में। और इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जब वो योग्यता के अनुसार ब्राह्मण हो जाता है, यानी सत्वगुण में स्थित हो जाता है। ब्राह्मण शब्द सत्वगुण से प्रतीक है, यानी कि उसमें सत्वगुण होता है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण जब समाप्त हो जाएगा तो सत्वगुण में आ जाएंगे ना। अन्य सारे लोग जो सत्वगुण में नहीं है, या तो क्षत्रिय वैश्य या शूद्र, या शूद्रों से भी अधम होते हैं। अब सत्वगुण में आना आवश्यक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नित्यम भागवत सेवा। देखो भागवतम श्रवण करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं श्रवण करेंगे तो सत्वगुण में नहीं आएंगे, और फिर जब तक सत्वगुण में नहीं आएंगे तब तक हम ये जो अपने आप को आत्मा जानते हुए भी, मतलब आत्मा समझ पता भी चल जाएगा, लेकिन ज्ञान के साथ वैज्ञान नहीं कर पाएंगे, यानी प्रैक्टिकल उसको हम अपने जीवन में नहीं उतार सकेंगे। लेकिन जब जब हम श्रवण करते जाएंगे तो क्या होगा, रजोगुण और तमोगुण का भाव समाप्त हो जाएगा, किसी भी भौतिक पदार्थ से हमें हमारा कोई रिलेशन नहीं दिखेगा, फिर क्या होगा, शुद्ध सत्व में यानी ब्राह्मण स्थिति में, सत्वगुण में यानी ब्राह्मण स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। और श्री प्रभुपाद जी बोलते जो ब्राह्मण स्थिति में नहीं है वो क्या है, वो या तो वैश्य है या शूद्र है या शूद्रों से भी गिरा हुआ है। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। इस स्थिति, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना अपने सारे कार्य, भले आप वैश्य हो शूद्र हो जो भी हो, आप अपने कार्य छोड़ दो और ब्राह्मण की अवस्था में आ जाओ। नहीं, ब्राह्मण की अवस्था में आने का मतलब क्या है कि आपको अपने जीवन की वास्तविकता को समझना है। सत्वगुण में जब तक स्थित नहीं होंगे तब तक अपने जीवन की वास्तविकता को नहीं समझेंगे। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण ना हो तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। सत्वगुण में एटलीस्ट आना पड़ेगा, रजोगुण और तमोगुण तक आप रह जाओगे तो आप भक्त नहीं बन सकते हो। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से भ्रमण लेता है, किंतु यह उसकी चरम प्रणीति नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। अब ये चरम प्रणीति ब्राह्मण तक पहुंचना भी नहीं है। ब्राह्मण स्टेज तो सिर्फ इसलिए है कि आप भक्ति स्टार्ट कर सको, लेकिन ये चरम लक्ष्य नहीं है। फिर चरम सिद्धि क्या है, आगे की अवस्था क्या है, यहाँ पर आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण को, कैसे ब्राह्मण को, जिसने रजोगुण और तमोगुण का नाश कर दिया। कैसे नाश कर दिया, नित्यम भागवत सेवा। जब भगवान के साथ कंटिन्यूस भागवतम का श्रवण करते तो नैष्ठ की भक्ति उत्पन्न होती है, नैष्ठ की भक्ति उत्पन्न होती है तो रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता है। जब तमोगुण और रजोगुण नाश हो जाते तो सत्वगुण में आ जाते हैं और ब्राह्मण स्थिति पर पहुंचते हैं। और ऐसे ब्राह्मण स्थिति को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। फिर क्या बनना चाहिए, वैष्णव बनना चाहिए। केवल सत्व गुण तक अटक के रहना नहीं है, आगे शुद्ध सत्व है उधर तक पहुंचने के लिए वैष्णव बनना है। और शुद्ध वैष्णव मुक्त जीव होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है, क्योंकि वो सत्वगुण में रहकर कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि सारे गुणों से ऊपर जो वैष्णव होता है ना, वो सारे गुणों से ऊपर होकर कार्य करता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव है। ब्राह्मण जो है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं आप सत्वगुण में आ जाओगे तो बद्ध अवस्था से आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अनुभव रहता है, विज्ञान का अभाव रहता है। यानी कि आप ब्राह्मण स्थिति में भगवान की भक्ति स्टार्ट कर लेते हो, सत्वगुण में आ जाते हो, लेकिन भगवान की विज्ञान यानी भगवान के साथ प्रेम का संबंध केवल एक वैष्णव का होता है। ब्राह्मण स्थिति में आप विधि विधानों से भगवान की पूजा करते हो, लेकिन वो प्रेम जो हृदय के अंदर उत्पन्न होता है ना, वो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है किंतु परमेश्वर के साथ विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है। जब हम सत्वगुण में रहते रहते भगवान की भक्ति करते हैं और सत्वगुण में भगवान के कथाओं का श्रवण करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, तो आगे बढ़ते 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 भगवान के प्रति हमारा प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और भगवान स्वयं हृदय के अंदर प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान स्वयं आ जाते हैं तो फिर जीव जो है उसका सत्वगुण समाप्त हो जाता है, और जब सत्वगुण समाप्त हो जाता है वो विशुद्ध सत्व में आकर टिक जाता है, उसको कहते हैं वसुदेव स्थिति। इसके विषय में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य को ब्रह्म अवस्था से को पार करके वसुदेव अवस्था को अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान कृष्ण को समझ सके। कृष्ण को हम सत्व गुण में रहकर नहीं समझ सकते, विशुद्ध सत्व वसुदेव अवस्था को में आकर ही हम भगवान को, जब भगवान के साथ प्रेम निर्माण हो जाता है, हृदय के अंदर केवल कृष्ण ही दिखता है, भौतिक किसी भी पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं लगता। अभी तो हम भगवान कृष्ण को भगवान समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक सारे संशय मिटे का हृदय के, यानी कि अगर भगवान को सब कुछ समझते कि भगवान ही सब कुछ सर्व कारण कारण, ये जाना है अभी खाली, उसको रियलाइज नहीं किया, भगवत तत्व विज्ञान नहीं हुआ है, जब ये हो जाएगा ना फिर आसक्ति अपराध कभी हमारे पास भी नहीं आ सकेंगे फिर तो, क्योंकि भगवान के साथ इतना प्रेम हो जाता है जब भगवान आपको पता चले। अब देखो इस संसार में देखो, अभी भौतिक चीजें हमें कितनी अट्रैक्ट करती हैं। अब कोई लड़की, अभी जस्ट थोड़ी लड़की या लड़का थोड़े बड़े होते हैं है ना, मतलब युवा अवस्था में आते हैं, और उसको ये पता चल जाए कि वो सामने वो जो लड़का है उसके अंदर संपूर्ण गुण है, धन है, सुंदरता है, ऐश्वर्य, ज्ञान है, वगैरह हर चीज है उसके पास, बहुत बहुत उसके पास सब कुछ है, जो कि एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि मेरे ना बड़ी में होना चाहिए, तो वो क्या करे? और उसको ये भी पता चल जाए कि वो आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, फिर उसको संसार की कोई और चीज अच्छी लगेगी? कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा बस मुझे उसके अतिरिक्त और किसी को समय नहीं देना है, क्योंकि वही तो उसी को तो मैं ढूंढ रही थी कब से, मुझे वही तो चाहिए था, और अब वो मिल गया, अब तो संसार की कोई चीज आकर्षण। लेकिन भगवान में वो सब कुछ है, जो एक जीव आत्मा की प्यास है ना, वो सारा का सारा कृष्ण के अंदर है, लेकिन अभी तक हम उसको वैज्ञानिक तरीके से खाली पता चला है, उसको कभी रियलाइज नहीं करते, वरना तो संसार आकर्षित कैसे कर सकता था? जब भौतिक पदार्थ भी जब हमारी टाइप का, हमारी मतलब का हमें मिल जाता है, एक मार्केट में जाते हैं, कोई चीज हमें पसंद आ जाती है, पूरी मार्केट घूमते हैं भले, लेकिन उसके अंदर दिल लग गया बस वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, भले महंगा है भले जो भी हो, बार बार वही याद आ रहा होता है, वो वाला मुझे अच्छा लग रहा था, वो वाली ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फिर पूरा घूम घूम के वापस वही ले लेते हैं, क्योंकि पूरा उसके अंदर मन लगा हुआ है ना। अभी भगवान के बारे में पता चला है खाली, उसके अंदर अपना मन नहीं लगा है, क्योंकि कथा को श्रवण नहीं किया ना। वास्तव में यदि कोई शुद्ध वैष्णव के मुखारविंद से भागवत कथा श्रवण करने को मिल जाती है ना, फिर जीव वसुदेव स्थिति को प्राप्त कर जाता है, क्योंकि फिर उसे संसार की कोई चीज अच्छी लगने नहीं लगती है, समस्त गुणों को पार करके वो वसुदेव स्थिति को प्राप्त हो जाता है, ताकि वो भगवान को समझ सके, फिर वो भगवान को रियलाइज करता है। भगवान का विज्ञान, भगवत तत्व, आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्र, यानी कि जो भक्ति में जो मतलब आध्यात्मिकता में जो पोस्ट ग्रेजुएट जो होते ना छात्र, पोस्ट ग्रेजुएट टाइप के शिष्य होते हैं ना, बहुत आगे जो निकल गए होते हैं, वही इस अवस्था तक पहुंचते हैं। जो वसुदेव स्थिति है ना, वो हर कोई के लिए इजी नहीं होती है। आगे श्री प्रभुपाद देखो कितना बता रहे हैं कि मूर्ख या अल्पज्ञ परमेश्वर को नहीं जान पाते। ये विशुद्ध सत्व में आकर वसुदेव स्थिति को प्राप्त करना मूर्खों के लिए नहीं है, इसीलिए वे अपनी अपनी सनत के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे जैसे उनकी इच्छा होती है, जैसे जैसे उनके अंदर अक्कल होती है, अपना एक मत पता देते हैं और कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने तक भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ सकता। यानी कि ब्राह्मण स्थिति पर आप पहुंच जाओ, आप सत्व गुण में आ जाओ, लेकिन जब तक सारे गुणों से, भौतिक गुणों के कलमश से आप बिल्कुल दूर नहीं हो जाएंगे, सत्व गुण भी समाप्त नहीं हो जाएगा, विशुद्ध सत्व में वसुदेव स्थिति में नहीं आ जाओगे, तब तक भगवान के विज्ञान को नहीं समझ सकोगे। देखो यहाँ पर क्या कहा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। सारे जितने भी अभद्र हैं, जितने भी दुर्वासना हैं, जितने भी ये सारे गुण भले जिसमें भी आएंगे तो वो दुर्वासना ही है ना, आगे निकलना है ना हमें, तो उसी में हम तत्व भगवान के तत्व विज्ञान को समझ सके। अभी मैं कितना भी भगवान के विषय में आपको बता दूं या कोई भी हमें बता दे, क्योंकि हम स्टेज पर नहीं है ना। अभी किसी व्यक्ति ने समझो कभी भी स्ट्रॉबेरी नहीं खाई हो और उसको आप बताओ कि स्ट्रॉबेरी कैसे होती है, ठीक है, उसको बोलो थोड़ी मीठी होती है थोड़ी खट्टी होती है, लेकिन है ना उसको पता चल गया। अभी आपको आपने क्योंकि खाई है तो फौरन से आपके माउथ में टेस्ट आ गया ना कि ऐसी होती है, लेकिन है ना किसी ने कभी खाई ही नहीं होगी, किसी को खबर ही नहीं होगी कि उसका शेप कैसा होता है। अब उसको जब तक वो उसको एक बार टेस्ट नहीं करता ना तब तक वो उसको नहीं समझ सकता है ना, क्योंकि सारे फ्रूट्स तो खट्टे मीठे होते हैं, फिर उसको ऐसा लगेगा मैंगो जैसा टेस्ट होगा। आप बोलोगे नहीं उससे डिफरेंट है, बोलो फिर किसके जैसा होगा, पीच के जैसा खट्टा मीठा होता है, बोले नहीं उसके जैसा नहीं वो अलग होता है। तो वो अलग जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो जब तक हम शुद्ध सत्व में आकर भगवान को टेस्ट नहीं करते हैं, भगवान के विज्ञान को नहीं समझ सकते, तब तक हमें भगवान समझ में नहीं आते। वो भगवान जो है वो वक्ता, जो वक्तव्य है ना उसका विषय नहीं है, भगवान रियलाइजेशन का विषय है। वो बात करने के टाइम पर क्या हम उसके साथ अपना प्रेम अपने प्रेम को निर्माण कर रहे होते हैं, लेकिन उसको वही समझ सकता है। साच कहो सुन लो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। उसके लिए आपको प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम को भगवान के भगवान को समझने के लिए, भगवान के तत्व विज्ञान को समझने के लिए केवल प्रेम ही साधन है। जब हम प्रेम करेंगे, और प्रेम का कैसे पता चलता है आप किसी से प्रेम करते हो, जब उसके विषय में सुनना चाहते हो, है ना। प्रेमी प्रीतम के विषय में सुनना चाहता है, प्रीतम का बखान करना चाहता है, प्रीतम के गुणों को गाना चाहता है, ये दो क्वालिटीज से पता चलता है वो प्रेम करता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो लेकिन उसकी बात नहीं सुनना चाहते हो तो ये केवल आप है ना धोखा दे रहे हो, केवल झूठ बोल रहे हो कि मैं प्रेम कर रहा हूँ। जिसके जो जिससे प्रेम करेगा उसके, इवन माँ को देखो सारा दिन बच्चे को देखती रहती है, सारा दिन उसके कर्तव्य को देखती रहती है, लेकिन जब किसी कोई और आएगा और वो बताएगा तुम्हारे बच्चे ने मेरे साथ ऐसा किया, इधर को मैंने इसको ऐसे बोला तो उसने ऐसे बोला उसकी बदली में ऐसे, तो वो इतना गौर से सुनेगी क्योंकि प्रेम करती है ना अपने बच्चे की बात, उसको पता है कि ना मेरा बच्चा ऐसे बोलता है। जैसे किसी माँ को पता है हमारे एक छोटा बच्चा है वो ईशान, उसको बोलते ना जूस पियो तो बोला नहीं जूस नहीं पीना खांसी हो जाएगी, तो उसकी माँ को खाली बताओ कि मेरी मम्मी ने मुझे मतलब आपके बेटे को मैंने ऐसे बोला तो मुझे बोला जूस नहीं पीना खा, तो वो इतना गौर से सुने कि उसको अच्छा लगेगा। तो भक्त को भगवान के विषय में सब कुछ खबर होती है, ऐसा नहीं है कि उसने पहली बार कहा, लेकिन जितनी बार भी सुनता है उसको इतना अच्छा लगता है क्योंकि प्रेम करता है उससे। तो यहाँ पर साफ साफ बता रहे शाह पप्पा जी कि जब तक सारे भौतिक गुणों के कलमत से मुक्त होकर आप शुद्ध सत्व में यानी कि कृष्ण से प्रेम की स्थिति में नहीं आ जाते हो, वसुदेव स्थिति में नहीं आ जाते हो, भगवान के विज्ञान को नहीं समझ सकते। जब योग्य ब्राह्मण वास्तव में वैष्णव बन जाता है तो वह मुक्ति की प्रसन्न अवस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। जब वो प्रसन्नता उसको प्राप्त होती है, जब उसको प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण के साथ अपना प्रेम का संबंध निर्माण करता है, तब वो वास्तव में जानता है भगवत तत्व विज्ञान क्या है, जो आज हमारा शब्द है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, फिर तो कुछ रह नहीं जाता। क्या होता है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि। सॉरी ये कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।